हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुकारो पुकारो हे गोपाल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राधारमण गिरिधारी श्याम बनवारी। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधा गिरिधारी जी की जय। जय श्री राधे श्याम श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की हमारी कथा में 12 फरवरी 2017 शाम की कथा में आप सबका स्वागत है। सब नए आए हैं लोगों का भी स्वागत है, जो पहले से यहाँ पर थे उनका भी स्वागत है। हरे कृष्णा। यहाँ पर एक सुंदर श्लोक है, आप बोलिए सब लोग। मूढ़ो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयो समं पुण्यम्, उभयो हो समं पुण्यम्, भावग्राही जनार्दनः, भावग्राही जनार्दनः। इसका अर्थ ऐसा है, मूढ़ यानी मूर्ख, अज्ञानी या जो बहुत नीचे स्तर का व्यक्ति है, वो मूर्ख व्यक्ति जो है, वो अज्ञानी व्यक्ति, वो भगवान को विष्णाय कहता है। और धीरो वदति विष्णवे, धीर यानी जो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, संयमी है, ज्ञानी है, वो भगवान को विष्णवे विष्णु करके पुकारता है। लेकिन उभयो हो समम पुण्यम, दोनों को ही एक ही पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान, क्या आप तोतले हो या आपका वाणी स्पष्ट है, क्या आपको संस्कृत आता है क्या आपको नहीं आता है, आप गंवार हो विद्वान हो, ये भगवान नहीं देखते हैं। भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान भावग्राही है। ऐसा नहीं होता तो जो लोग हकलाने वाले हैं ना, कभी बोल ही नहीं पाते, वो शब्द ही नहीं आता उनका। ऐसा वायु का विकार होता है कि वो एक वाक्य बोलने में 15 मिनट लगते हैं, उनको निकलता ही नहीं वाक्य। तो क्या ऐसे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है? इसलिए वो है ना, अले कितना अले कितना 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 अले 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 लाम अले लाम 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 अले अले, ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं, नहीं आता है उनको बोलने को, क्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान ये नहीं सुनते हले कितना हले कितना, भगवान तो हरे कृष्ण ही सुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। कुछ लोग कहते हैं हम प्रभु जी आप कीर्तन करो थोड़ा, कोई नहीं कीर्तन करने के लिए, नहीं प्रभु जी हम हमारा आवाज अच्छा नहीं है। अरे हु केयर्स, आपका आवाज कैसा है? आवाज जैसा भी हो, सेवा अगर है तो करनी चाहिए। नहीं नहीं प्रभु जी मेरा वो सुर में गा नहीं सकता, मुझे आप जैसा गाने को नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है। भीमसेन जो था ना, भीमसेन वो तो गदाधारी बेचारे भीमसेन, उनको संगीत कला वगैरह क्या मालूम, वो तो उठा के पटक दोगे दुर्योधन को, ये उनका भाव था हमेशा। लेकिन वो भी गाते थे तो जब वो गाते थे सब लोग हंसते थे उनको। तो भगवान को उन्होंने एक बार बताया कि भगवान जब मैं गाता हूँ आपके लिए तो सब लोग हंसते हैं मुझे, बोलो कोई बात नहीं आप जंगल में चलो और अकेले मेरे लिए गाओ, मैं सुनूंगा उधर बैठ के। तो भगवान के लिए वो भीमसेन जंगल में गाते थे अकेले, ना कोई ताल ना सुर कोई। लेकिन भगवान सुनते थे बड़े प्रेम से उसका भजन, क्योंकि प्रेम से गाते थे वो। तो ताल सुर और सब कुछ अगर है अच्छा है, अगर आपको जमता है तो ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका वो गुण सूत्र के अंदर ही नहीं होता है ताल। गुणसूत्र मतलब क्या? क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, उसके अंदर जीन्स होते हैं, उसके अंदर भी वो ताल वाल समझता नहीं उनको। और कुछ लोगों को अच्छा रागदारी वाला गाना अच्छा लगता नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग होते हैं। मतलब उनको तो आता ही नहीं है लेकिन उनको सुनना भी अच्छा लगता नहीं है, ऐसे भी है। ऐसा होने पर भी अगर आप भाव से भगवान को पुकारेंगे टूटा फूटा तो भी भगवान सुनेंगे। इसलिए भाव की जरूरत है, भाव होना चाहिए। और ये मत समझना कोई सुंदर गा रहा है बहुत सुर और ताल के साथ तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर वो खुद की आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए गा रहा है, लोगों को अपनी गाने की कला से प्रसन्न करने के लिए गा रहा है, लोगों पर छाप डालने के लिए गा रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं हरे कृष्ण मंत्र गाने को बोलते हैं तो वैसा आलाप ही मारते रहते बहुत देर तक। अरे भाई मंत्र तो बोलो, भगवान के नाम तो उच्चारण करो, खाली आ ही करते रहोगे तो अपनी कला दिखाते रहते हैं। वो एक मंत्र पूरा करने के लिए 20 मिनट लगाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि वही हरे राम चल रहे हैं कि हरे कृष्ण चल रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। जब आप लोग कीर्तन करते हो ना तो उसमें भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। कीर्तन में नायक कौन है बताइए? हु इज द हीरो इन द कीर्तन? कीर्तन में हीरो कौन है? यस, कीर्तन में हरिनाम हीरो है। सबसे बड़ा नायक जो है कीर्तन में वो हरिनाम है। और अगर वो हरिनाम प्रधान नायक है तो उसको प्रधान ही रखना चाहिए, कोई वाद्य उसके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। जब गा रहा है तो मृदंग वाला इतना तूफान मृदंग बजा रहा है कि मैं इतना एक्सपर्ट मृदंग बजाने वाला हूँ, उसको दिखाने के लिए इतना बजा रहा है कि नाम उसमें दब रहा है, पूरा नाम गायब हो रहा है, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा नाम। वाद्य इतने बजा रहे कि नाम हरि बोल गायब हो गया नाम। तो आप कितने भी वाद्य लगाएंगे आपको ध्यान में रखना है कि उसका सेटिंग ऐसा होना चाहिए कि वाद्य दुय्यम है, सेकेंडरी है। आप उसमें फले कितने भी एक्सपर्ट होंगे, पद्मश्री होंगे आप, PhD उस वाद्य में, वो बजाते वाला होगा, लेकिन अगर कीर्तन चल रहा है तो उसका काम है साथ देना, हरि नाम को साथ देना। ये भाव होना चाहिए कीर्तन में, हरिनाम प्रधान होना चाहिए। इसलिए हम गाने वाले को भी माइक देते हैं और उसको रिपीटर को माइक देते हैं, ताकि जब गाएगा एक व्यक्ति माइक में और बाद में रिपीटर का आवाज़ ही नहीं आएगा उसके अंदर, खाली इंस्ट्रूमेंट ही आएंगे, मृदंग और करताली बजते रहेंगे, वही रिकॉर्डिंग में आएगा, फिर गाने वाला गाएगा, फिर एक बीच में गैप आएगा, फिर गाने वाले का आवाज़ आएगा, उससे क्या होगा? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधान कौन है, प्रधान म्यूजिक नहीं है। तो ये भाव सबको पता होना चाहिए। कीर्तन भी एक कला है निश्चित रूप से, लेकिन कला के ऊपर भाव है, भाव के बाद कला आती है। भगवान कला को नहीं देखते हैं, पहले भाव को देखते हैं। अगर भाव कला के साथ है तो बढ़िया है, बहुत नंबर वन, अच्छी बात है। लेकिन कला नहीं है, भाव है, तो भी नंबर वन है वो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका प्रूफ ये है कि भीमसेन के कीर्तन को भगवान जंगल में सुनते थे, भगवान सुनते हैं, और भगवान आपकी रागदारी भी सुनते हैं, लेकिन उनको अधिक सुनाई पड़ता है आपका भाव, जिस भाव से आप गा रहे हो वो उनको ज़्यादा सुनाई पड़ता है, और रागदारी बात भी सुनाई पड़ती है। तो अगर रागदारी के साथ आप भाव से गाएंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रागदारी नहीं आती है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ने ऐसा सेटिंग बना के रखा है, जिनको रागदारी नहीं आती है उनका भी आवाज़ सुनते हैं वो। तो सबसे बड़ा जो चीज़ है ना वो भगवान को अच्छी नहीं लगती है, वो है दंभ, दिखावा, ढोंग, आडंबर, जो खड़ा करते ना वो भगवान को बड़ी चिढ़ आती है उससे। क्योंकि आडंबर किस चीज़ का करते हैं? जो धन का करते हैं, या तो कोई ऐश्वर्य का करते हैं, या बड़े जन्म का करते हैं, सौंदर्य का करते हैं, पैसे का करते हैं, है ना? लेकिन ये सब कुछ तो उनका दिया हुआ है, उस पर हम लोग बड़ा ढोंग जमाते हैं, जितना नहीं है उतना है ऐसा दिखाते हैं। लेकिन भगवान बराबर पकड़ते हैं उसको, और भगवान आडंबर से फंसते नहीं कभी। इसीलिए दुर्योधन के घर में उनको बुलाया गया, 56 भोग खिलाया। 56, वो तो राजा था ना, राजा, उसके पास तो बहुत धन संपत्ति थी, 5-स्टार खाना बनाया था उसने भगवान के लिए। अब भगवान ने कहा आऊँगा 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 आऊँगा, उनको मालूम है कि दुर्योधन के बुलाने के पीछे राजनीति है, पॉलिटिकल पर्पज़ है उसके पीछे, इसलिए वो निकले घर से जाने के लिए। उसके घर के पास भी गए, लेकिन वहाँ से आगे चले गए वो। वहाँ से आगे चले गए और विदुर की झोपड़ी में घुसे। वहाँ दुर्योधन के यहाँ पर पूरी खबर थी कि आने वाला है, ये टाइम है, डिनर है, ऐसा सब कुछ फुल फिक्स था। लेकिन विदुर के घर पे खबर भी नहीं थी, उनको पता था कि वो आज आने वाले आज, तो विदुर जी बाहर चले गए कुछ काम से, और झोपड़ी में विदुरानी उनकी पत्नी अकेली थी, सीधे चले गए, बोले भूख लग रही खाना खिलाओ, खाने का समय है। तो एकदम वैसे भाव विभोर हो गए, अरे भगवान मेरे घर पे आए, अरे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किधर बिठाऊँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है कुछ इनको। तो भगवान ने कहा, ऊपर से कहा कि भूख लग रही है, तो वो घर में गई, कुछ हाई नहीं था, कुछ खाना बनाने का तैयारी नहीं थी, तो केले मिले, तो केले ही लेकर आई वो। हाँ भाई, भगवान को केले खिलाऊंगी, लेकिन भगवान को देखकर इतनी खुश हो रही थी, इतने आनंद हो रहा था, इतना भाव विभोर हो रही थी कि ऐसा हम लोग थोड़ा खोलते ना, थोड़ा खोलते खाते पे थोड़ा खोलते, तो बड़ा वहीं बना रहता है अच्छी तरह से, ये पूरा खोल रही है ऐसा। केला फेंक देती है और छिलका खिला रही है, और भगवान भी छिलका आराम से खा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं। एक छिलका खाया, दूसरा केला खोला, केला फेंक दिया, छिलका दिया, वो खा रहे हैं। उतने में खबर पहुंच गई कि विदुर जी को कहाँ भी जहाँ पर भी थे कि भगवान तुम्हारे घर आए, तो भाग भाग के आए वो, और देख रहे हैं कि हमारी पत्नी जो है इतनी भाव विभोर होकर उनको निहार रही है, और केला फेंक रही है, और छिलका खिला रही है। कह रही है, मूर्ख औरत क्या कर रही हो, छिलका खिला रही हो। भगवान कहते हैं, डिस्टर्ब मत करो, जो चल रहा है वो सही चल रहा है, वो प्रेम से खिला रही है, मैं खा रहा हूँ, मैं केले का भूखा नहीं हूँ, प्रेम का भूखा हूँ, प्रेम खिला रही है, मैं खा रहा हूँ। इतना सुंदर उदाहरण है। 56 भोग दुर्योधन का त्याग कर विदुरानी के घर में केला फेंक के छिलका खा रहे हैं, ये है भगवान हमारे। ये समझना, ये समझ आपको समझ में आया तो फिर आप भक्ति कर सकते हो। तो इसी भाव पर मुझे शबरी की कहानी याद आती है। हम सब लोगों को बचपन में शबरी की कहानी पढ़ी है, लेकिन दुर्भाग्य से हमने छोटी सी उसका हिस्सा ही पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है उसको। तो शबरी ना अपने घर पे थी, एक भिल्ल मतलब बहुत जंगली जाति की, माता पिताओं की जंगल में रहने वाली लड़की थी। उनके घर में बहुत बकरियाँ थी, बहुत मेंढियाँ थी, और जैसे भिल्ल लोग उसका लालन पालन करते हैं वैसे वो करती थी। लेकिन उसको उतने अपने भिल वो मेंढियों को इतना प्यार था कि वो रोज़ रात को उनको बड़े प्रेम से उसको दुलारती थी, सुलाती थी वगैरह। लेकिन उसके ध्यान में एक दिन ऐसा आया कि कुछ मेंढियों की संख्या कम होती जा रही है, मैं जितना घुमाती हूँ उतना बाद में रहते नहीं, अगले दिन कम रहते हैं। तो उसने जानकारी की तो पता चला कि उसके पिताजी उनको बेचते हैं काटने के लिए। उसको ये पता भी नहीं था, वो अपने बालकों की तरह, अपने छोटे भाइयों की तरह उन पर प्रेम करती थी, बड़े भाव से उनको दुलारती थी। तो जब उनको पता चला कि हमारे पिताजी उनको बेचते हैं काटने के लिए, पैसे के लिए, तो बड़ी दुखी हो गई वो, और अपना घर छोड़ के जंगल भाग गई वो। उसको सहन ही नहीं हुआ कि मैं ऐसे घर पर रहती हूँ जिसमें बकरियों को मारा जाता है और उसके पैसे से मैं खाना खाती हूँ। इतनी छोटी उम्र में इतना बढ़िया भाव था उसका, तो घर छोड़ के अकेले जंगल चली गई वो। और भिल्ल की बेटी थी वो, तो उसको पेड़ पे चढ़ना उतरना एकदम बहुत एक्सपर्ट थी वो, एकदम जीप जंगल में चली गई। बहुत अंदर चली गई तो उसको दिखाई पड़ा कि साधु लोग रह रहे हैं वहाँ पर, तो पेड़ पे चढ़ के छुप गई और देखा साधु लोग भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो बड़ा उसको दिल में आकर्षण लगा, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई वो। तो वो पेड़ पे ही रह रही है, और पेड़ पे रहने के बाद में क्या करती थी कि साधु लोगों की सेवा करनी चाहिए, इससे उसकी प्रेरणा हुई, उसको लगा कि साधुओं की सेवा करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, वो एकदम सवेरे उठती थी बहुत जल्दी, अंधेरे में उठती थी, और साधुओं का जो इलाका है ना वो, जिसमें वो भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो सब जगह पर वो झाड़ू लगाती थी, फल फूल तोड़ के लाती थी, और पूजा का सामान रखती थी, फल इकट्ठा रखती थी, फूल भी रखती थी, ऐसे सारी व्यवस्था करके ऊपर वापस पेड़ पे जाके छुपती थी, और वहीं पर फल वल खा के अपना दिन गुजारती थी। साधु लोग आते दिखते थे, अरे सब कुछ तो तैयार है, लेकिन लगता था कि हम में से कोई सेवक कर रहा है उसका तैयारी। लेकिन बाद में ध्यान में आया सबको कि हम में से कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हर सवेरे वो तैयार मिलता है उधर। तो फिर क्या हुआ, ये कौन कर रहा है, पहले पूछताछ किया, इंक्वायरी किया, लेकिन पता चला कि हम में से कोई नहीं कर रहा है। तो फिर जब पता चला कि हम में से कोई नहीं कर रहा है, तो सब लोग ने तय किया कि हमको अभी देखना है कौन कर रहा है। तो सब लोग जितने समय पर रोज आया करते थे उससे बहुत जल्दी आके झाड़ी में छुप गए, और देखा कि छोटी सी लड़की पेड़ के अंदर से उतर कर आ रही है और बड़े प्रेम से झाड़ू लगा रही है, फिर जाके फल तोड़ रही है, फिर फूल तोड़ रही है, एक जगह रख रही है, यज्ञ का सामान पूरा सब संभाल रही है अच्छी तरह से, और फिर जाके ऊपर छुप रही है। तो अगले दिन उन्होंने उसको ये करते हुए ही पकड़ा और पूछा, तुम कौन हो, कितने दिन से सेवा कर रही हो, हम लोग परेशान थे कि पता नहीं कौन कर रहा है, और आज पता चला कि आप कर रही हो, आप कौन हो। फिर वो संक्षेप में अपनी कहानी बताती है। तो जो उनके साधुओं के जो गुरु थे वो उनको दीक्षा देते हैं, उनको शिष्य बनाते हैं, और उनकी ये सेवा भाव से अभी देखो भिल्ल की लड़की है वो, कोई नॉलेज या वेदों का ज्ञान या कुछ लोग ऐसा कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन कितना निर्मल सेवा भाव है उसके मंदिर, उसको साधुओं की सेवा करने ऐसी प्रेरणा है उसके अंदर। तो जो उसको आता है, जो उसको सीखा था, वो सेवा कर रही हो और बड़े प्रेम से कर रही है, और वो भी ऐसा नहीं कि बता रही है कि मैंने किया है, चुप चुप के कर रही है, उनको सेवा करनी थी, उनको नाम नहीं चाहिए था, कहीं नोट किया जाए, बोर्ड पे नाम आ जाए कि आज की सेवा इसकी है, उसको अपने आप को छुपा कर रख कर सेवा करनी थी। लेकिन फिर भी जब सेवा ऐसी होती है ना, वो पता ही चल जाता है, उस सेवा की खुशबू इतनी सुंदर होती है कि वो कोई मिस नहीं कर सकता है उसको। तो फिर उन्होंने दीक्षा दिया उनको, और गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा भाव इतना अच्छा है, मैं एक दिन ज़रूर भगवान के दर्शन होंगे, आशीर्वाद दिया उसको। वो सुनकर वो इतनी भाव विभोर हो गई, इतना आनंद का अनुभव किया उसने, सब कुछ सुध-बुध भूल गई वो, जैसे नाच रही हो, जैसे ऐसे मशगूल हो गई पूरे भाव में, इतने आनंद हो गया उसको। और वो दिन उनका लास्ट दिन था, और वो सब यज्ञ वगैरह करके सब साधु लोग चले गए दूसरे वन में। वन जो यज्ञ भूमि, यज्ञशाला, साधुओं का जो निवास था, खाली हो गया, और बहुत साधु लोग निकल गए, उनका विदा किया, पैर पड़े और चले गए वो। जब वो क्षितिज के पार, मतलब आंखों से ओझल हो गए, दिखना बंद हो गए, तब उसको याद आया, अरे मैंने पूछा नहीं कभी भगवान के दर्शन होंगे, पर कभी ये पूछना ही भूल गई वो। लेकिन साधु बहुत दूर जा चुके थे, अभी पूछना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसको इतनी श्रद्धा थी साधु के वर्ष शब्दों पर, पता नहीं। तो उसी दिन से वो तैयारी करने लगी, शायद आज भी आ सकते हैं, इसलिए वो उसी झोपड़ी में रहने लगी जहाँ पर वो रहते थे। वहाँ रहकर जंगल में जाकर बेर निकालती थी, उसमें से कुछ बेर खाती थी, कुछ कड़वे खट्टे होंगे तो निकालती थी, मीठे बेर अलग रखती थी, खट्टे बेर अलग फेंकती थी और लेके आती थी। हम लोगों ने खाली सुना है कि राम आए, उन्होंने बेर खिलाए, लेकिन वो हर रोज़ ये काम करती थी, एवरी सिंगल डे। और हर रोज़ जिस रास्ते से भगवान आ सकते हैं उसके झोपड़ी तक, उसको फूलों से सजाया करती थी वो हर रोज़। लेकिन आज किया तो आज भी नहीं आए, फिर कल आएंगे शायद, तो कल भी वही काम, फूल बिनना, बेर बिनना, रोड को सजाना और इंतज़ार करना, बैठना कि आएंगे आएंगे। सब लोग ध्यान से सुनिए, 5 साल की उम्र से वो 85 साल की बुढ़ी औरत हो गई और रोज़ ये काम करती थी। हम लोग बोलते भी क्या, अभी कितना करने का, अभी कितना दिन तो हो गया, अभी पता नहीं, अभी छोड़ देते उसको, जिस दिन आएंगे ना उस दिन अर्जेंट में कुछ कर देंगे। हम लोग ऐसा शहरी लोग सोचेंगे कि भाई कितना मेहनत करना है, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है वो मेहनत करके फ़ायदा क्या है, ऐसा पहला सोचेंगे। हम लोग तो बनिया लोग हैं ना, सब शहर के लोग, हमको हर काम में कुछ ना कुछ फल चाहिए तुरंत, क्या मिलेगा भाई ये करके, मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, क्या लाभ होगा, ये हमारी मेंटेलिटी है। लेकिन वो उस भाव से कर ही नहीं रही है, हम लोग बंद कर देते उसको और बोले जब आएंगे तभी उस दिन करेंगे कुछ। इसने ये तो बचपन से फिर जवान हो गई, जवान से फिर मध्यम वयीन हो गई, मध्यम वयीन से फिर और थोड़ी सी एजड हो गई, फिर वो बुढ़ी हो गई, फिर अतिवृद्ध हो गई, फिर वो झुक गई, हाँ कुबड़ी हो गई वो, और झुक झुक के वो डाल रही है, और झुक के ही जाके बेर चुन रही है, और रोज़ रख रही है उसको टोकरी में, यहाँ बिठाएंगे उनको, रोज का प्लानिंग है ना वो, यहाँ बिठाएंगे, यहाँ टाट बिछाएंगे, यहाँ पर गोबर लेपूंगी साफ करके, यहाँ पर टाट बिछाऊंगी, फिर उनको बिठाऊंगी, और यहाँ पर खिलाऊंगी, यहाँ पर बात करूंगी, यहाँ पैर छूंगी, रोज का उसका चिंतन है। इसमें उसने पूरा जीवन बिता दिया, देखिए वो झुक गई पूरी, और उस समय जब भगवान आए तभी वो झुकी हुई औरत झुकी हुई स्थिति में फूल लगा रही रास्ते पर, और जब वो फूल लगा रही है तो उसके सामने 4 चरण आए ऐसे, 2 pairs of feet ऐसे। तो देखिए उसने, अरे प्रभु आप आ गए, अरे आप प्रभु आ गए, तो वो ऊपर नहीं उठ पाई, देख नहीं पाई उनको, तो प्रभु ने उनको संवारा और ले गए उसको अंदर। तो उसने बिठाया प्रभु आसन पे जो लगा के रखा था, टाट पे राम लक्ष्मण बैठ गए, और तुरंत उन्होंने फूल अर्पण किए जंगल के पैरों पर, जल दिया जंगल का, वो बेर लेके आई और सब ऐसे खाए हुए बेर, तो भगवान को दिख दिया उसने, भगवान ने मुंह में डाला, लक्ष्मण जी बैठकर देख रहे हैं, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्या चल क्या रहा है, हाँ ठाकुर है हमारे, भगवान है, भाई है तो, लेकिन भगवान है वो, प्रभु रामचंद्र है, उसको तो मंत्रों से और घंटी से और क्या क्या श्लोक बोल के भोग लगाया जाता है, तो झूठा खाया हुआ खिला रही, कुछ रिवाज नहीं, भिल्ला औरत को कुछ जानकारी नहीं, कोई तरीका नहीं, गवार औरत, तो टोक रहे भगवान को, भगवान कह रहे डिस्टर्ब मत करो, बाद में बताऊंगा इसका पर्पज क्या है। लक्ष्मण जी ऐसे बाग बबूला हो रहे, भगवान के आदेश के बाद कुछ कर नहीं पाए, और सारे बेर खाए भगवान ने। फिर शबरी ने, शबरी को भगवान ने कहा मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तो शबरी का मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, आपका इंतज़ार था, आपके लिए बैठी थी, जीवन भर आपका इंतज़ार किया और आप आए, अभी क्या चाहिए मुझे? और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई भी नहीं है आपके सिवा, आपके लिए आपका ही इंतज़ार करते हुए पूरा जीवन बिताया मैंने, और आप आई, यही मेरा फल है, यही वरदान है, यही सब कुछ है, यही आशीर्वाद है, वो कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान ने उसको तुरंत मोक्ष दे दिया, वो सबके मतलब लक्ष्मण जी के और आँखों के सामने वो एक सुंदर वैकुंठवासिनी बनकर भगवत धाम चली गई। कुबड़ी थी बुढ़ी औरत, उसी समय सुंदर मतलब मौत हो गई एक तरह से, लेकिन शरीर छूटते ही सुंदर वैकुंठवासिनी का शरीर प्राप्त हुआ, दिव्य शरीर, प्रकाशमान विमान आया और उसको सीधे भगवत धाम लेके गया और भगवान अपने वनवास में आगे बढ़े। तो क्या देखते हैं भगवान, क्या इतना दूर से इतना आया मैं, कुछ मेरे को रोटी वोटी खिलाया नहीं, कुछ नहीं, चावल नहीं था, ना दाल थी, ना मिठाई था, केवल ऐसे ही जूठे जूठे बेर खिला दिए, ये भी कोई तरीका है? मैंने शास्त्र में लिखा है ऐसा ऐसा करना चाहिए मुझे भूख लगाने समय, लेकिन भगवान वो नहीं दिखते, भगवान केवल भाव देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ही, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सब कुछ नॉलेज है फिर भी आप जूठा खिला के भगवान को खिला रहे हैं, वो उसके पास कुछ चारा नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, चारा भी नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं तो इतना कुछ बनाने का, एक रोटी सब्जी बना दो भगवान के लिए, हम लोग फिस्ट खाएंगे, भगवान को रोटी सब्जी खिला दो, ऐसा नहीं होता है। जिसके पास साधन है वो पूरे साधन के साथ में भगवान को भोग लगाना चाहिए, जो गरीब है वो अपनी तरफ से लगाना चाहिए, लेकिन भाव दोनों तरफ से। भगवान जब उधर गए ना मिथिला देश में गए, मिथिला इधर बिहार के एकदम उत्तर दिशा में है, नेपाल के पास में है, यहाँ पर वो जब गए थे भगवान तो वो दो जगह उसको निमंत्रण आया भगवान को, एक श्रुतदेव ब्राह्मण के घर पे उदाहरण निमंत्रण आया और एक राजा बाहुलाश्व जो मिथिला नगरी का राजा था, किंग ऑफ द मिथिला, उसके यहाँ पर निमंत्रण आया, और एक झोपड़ी वाले ब्राह्मण ने भी बुलाया भगवान को एक ही समय पे। तो भगवान दोनों जगह गए, कैसे गए? दो रूप बनाए भगवान ने, एक रूप भगवान का राजा के पास गया, एक ब्राह्मण की झोपड़ी में गया। जैसे ही राजा के पास गए तो देखा इतना बड़ा, इतने सारे व्यंजन, इतना ठाट, सोने की थालियाँ, क्या सत्कार, हाँ गुलाबदानी भी सोने की, रत्न जड़ित हर चीज़, बैठने के लिए रत्न सिंहासन, ऐसा ऐश्वर्य के साथ उन्होंने भगवान को इतना सत्कार किया, लेकिन इतना प्रेम था, ये सब करने के बाद में बैठ गए जमीन पे राजा और भगवान के चरण कमल गोद में लिए और दुलारने लगे प्रेम से, आंखों से अश्रु बहते हुए उसका मालिश करने लगे। भगवान इतने प्रसन्न हुए उसके भक्ति भाव से, धन का पूरा इस्तेमाल भगवान को संतुष्ट करने के लिए लगाया, बड़े प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवान इस के झोपड़ी में घुसे, झोपड़ी में गए तो सब जगह गोबर का लिपा हुआ भूमि था, कोई कारपेट नहीं था, गोबर से लिपा हुआ जमीन, उस पर टाट के आसन गुणपाट, तो भगवान को बिठाया जमीन पर, कोई कुर्सी वर्सी, कोई आसन, कोई कौच, कोई ऐसा कुछ सिंहासन नहीं था, और एकदम सिंपल गांव का खाना बिठा के पत्तल पे खिलाया उसको। लेकिन जब भगवान आए ना तो ये नाचने लगा, आनंद से विभोर होकर नाचने लगा, भगवान को प्रसन्न कर दिया नाच के उसने, फिर सेवा किया भगवान का, और वैसे ही जैसे भगवान का भोजन हो गया तो भगवान के चरण कमल गोद में लिए और आंखों में आंसू लेकर उसके मसाज करने लगा, मालिश करने लगा पैरों का। तो एक आदमी गरीब है, झोपड़पट्टी वाला है, झोपड़ी में रहने वाला है, एक आदमी राजा है, दोनों का भगवान आदर आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के भक्ति को आस्वादन कर रहे हैं, इसका छप्पन भोग और इसका सूखी रोटी नहीं खा रहे हैं, दोनों खा रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है उनके भाव में है। तो हमें यही देखना है, अगर हम गरीब है तो गरीबी है तो गरीब अपना खाना खिलाएगा, लेकिन पैसे है आपके पास फिर भी अगर आप भगवान के लिए कंजूसी कर रहे हैं, खुद के लिए आनंद कर रहे हैं, तो वो भगवान के लिए आनंद देने वाला नहीं है। गरीब या अमीर होना अपने कर्मों के प्रभाव से है, लेकिन भाव गरीब और अमीर पर डिपेंड नहीं रहता है, गरीब से गरीब आदमी भी उसका श्रेष्ठ भाव हो सकता है। कितने भगवान के गरीब भक्त हैं सोचो आप, वो जगन्नाथपुरी में एक यवन औरत, मुसलमान औरत, भगवान जगन्नाथ से इतना प्रेम करती थी, आउटकास्ट थी ना वो, वो कौन मंदिर में आने देगा, वो खिचड़ी बनाकर लेके आई तो उसको सब पुजारियों ने झटका झटक दिया उसको, जाओ यहाँ से, तो बड़ा रोती हुई घर पे चली गई झोपड़ी में, जगन्नाथपुरी के बॉर्डर के बाहर और रोने लगे बैठकर। वो बड़े राजभोग के समय पे आई थी वो, और उस समय उसका भोग रिजेक्ट किया गया खिचड़ी का, और भगवान को भोग लगाया गया जो भी उनका भोग था 56 भोग। तो भगवान का भोग लगाने के बाद घंटी बजा के जैसे पर्दा बंद हो गया, भगवान वहाँ से गायब हो गए। वो बालक का रूप धारण करके सीधे झोपड़ी में गए, उसके ला छोटा सा नीला सा बालक बन के। और वो बालक बोल रहा है, मैया भूख लग रही है, कुछ खाना खिलाओ, बड़ी भूख, दूर से आया हूँ मैं। मैया रो रही है, बोले क्यों रो रही है, कुछ है भोजन को तो खिलाओ। तो बोले बैठो, बैठाया और पूरा खिचड़ी खिलाया, भगवान दोनों हाथ से लाट चाट रहे उसको। उतने में वहाँ घंटी बजी पर्दा खोलने की, तुरंत भागे वहाँ से और खड़े हो गए। तो हाथ पे खिचड़ी लगी हुई है और मुंह पर भी खिचड़ी लगी हुई है। जब पर्दा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, हाथ पे भी खिचड़ी है, मुंह पे भी खिचड़ी, लेकिन भोग में कहीं भी खिचड़ी नहीं है। तो कहाँ से खिचड़ी खाया जगन्नाथ, तो चमत्कार है। तो उन्होंने सब शोध किया उसका, तो पता चला कि खिचड़ी वो बुढ़िया ने बनाई थी जिसको हमने रिजेक्ट किया था। तो उसके घर पे गए, पूछा क्या हुआ, तो बोले छोटा सा बालक आया था, बोला था भूख लग रही है, तो हमने खिलाया उसको। मैं रो रही थी लेकिन वो आया, इतना प्यारा सा बच्चा था, मुझे बोला भूख लग रही है तो हमने खिलाया, लेकिन पता नहीं क्यों भाग गया बीच में अचानक भाग गया बीच में। तो सब समझ गए पुजारी लोग, तो उस बुढ़िया को सम्मान से बुलाया उन्होंने, और रोज उसकी खिचड़ी अभी भगवान को ऑफर होती है, उसके वंशज के घर से भी ऑफर होती है। उस दिन से वो चालू हो गया जगन्नाथ और खिचड़ी का हिसाब किताब। आया कहाँ से है, किसी आउटकास्ट के घर से आया है, लेकिन भगवान के लिए कोई आउटकास्ट नहीं होता है, हमारे लिए, हमने बनाया उसको, ये आउटकास्ट, ये ब्राह्मण, ये ऐसा वैसा, सब भाव भी कुछ नहीं है, खाली जाति का भेद करते, बस धर्म का भेद करते, जाति का भेद करते। भगवान के दरबार में कोई जाति धर्म का भेद नहीं होता है, भगवान के दरबार में भगवान के बालक है सब, एक काला है एक गोरा है, थोड़ी उसकी जाति अलग होती है। अरे वो हमने वो पालघर में गए थे, तो एक कुतिया ने, एक कुतिया ने बच्चे को जन्म दिया, 6 बच्चे को, उसमें एक पूरा काला कुत्ते का बिल्ला, एक ब्राउन और एक वाइट, और ऐसे एक पट्टे वाला। तो माँ क्या बोल, हे वो हमारे डॉक्टर संकेत की माता है ना, वो बोल रही थी कि ये कुत्ती है ना, इसको काला रंग पसंद नहीं है, कोई भी ऐसा काला आदमी आएगा समझो आदिवासी टाइप या ऐसा कुछ काला रंग का कोई आया तो बहुत जोर से भौंकती है वो। तो मैंने कहा फिर पिल्ले का क्या करेगी वो तो पिल्ला भी काले रंग का है। मैंने, पिल्ला तो पिल्ला है, पिल्ले पर प्रेम करती है वो, हमने खुद देखा सब पिल्ले एक साथ में बैठे हुए हैं, कोई भेदभाव नहीं कि तू काला है, तू गोरा है, तू ऐसा है, वैसा है, तू सुंदर नहीं है, वो सुंदर हूँ, माँ के लिए कोई भेदभाव है क्या। उसी तरह से भगवान जब जन्म देते हैं हमको, तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्रिश्चन है, ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन जब भगवान हमको देखते हैं तो देखते नहीं कि ये क्रिश्चन है और हिंदू है, भगवान देखते मेरा बालक है, इज माई चाइल्ड, ये उनका भाव है। तो हमारा भाव भी वैसा ही होना चाहिए जैसा उनको अच्छा लगेगा। इधर श्रीनाथ जी है हमारे गोवर्धन में, उधर भी यही कहानी है, श्रीनाथ जी को ऐसे ही मुसलमान औरत खिचड़ी लेकर आई थी, उसको भगाया गया, तो फिर भगवान उसके घर पे जाके खिचड़ी खा के आए। अरे आप भगाओगे थोड़ी, भगवान से आप कंट्रोल कर सकते हो, भगवान तुम भी जाना नहीं है, मैं बोल दिया उसको भगा दिया है, जरा उसको शांत करो जरा बच्चे को। तो हम भगा सकते हैं अपने जड़ बुद्धि की वजह से, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनके लिए कोई निचला जाति का और ऊपर जाति का नहीं है। भगवान खा के आए, अभी भी श्रीनाथ जी को खिचड़ी लगती है उसी याद में, एक ऐसे भाव के भूखे हैं वो। और यहाँ पर भी वही है, 10 साल या 11 साल 52 दिन तक यहाँ पर गोपियों को भगवान का संग मिला, अचानक भगवान चले गए। एक दिन अक्रूर जी आए, उनको ले गए, गोपियों ने बहुत विरोध किया उनका, कहा कि हमारे लाश पर चले जाओ, जाना ही है तो हमारे लाश पर चले जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो भगवान ने समझाया उनको कि प्रेम ऐसा नहीं होता है, इतना जिद नहीं करते हैं, थोड़ा संयम भी रखते हैं प्रेम में, विश्वास करो मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, 2 दिन के बाद मैं आऊँगा, शीघ्र ही आगस्य, 2 दिन के बाद आऊँगा। तो जिस जगह बताया उस गांव का ही नाम पड़ा, सिंह और पलसों, सी पलसों गांव का नाम है, यहाँ पर भगवान ने कहा मैं शीघ्र आऊँगा और पलसों आऊँगा। तो भगवान को उस बात, गोपियों को उस बात पर विश्वास था कि भगवान ने कहा है मैं आएंगे वो ज़रूर। वैसे ही वो निकल रहे थे तभी वो जो एक उनका मित्र था पुंछड़ी का लौठा बाबा, कहते हैं वो हनुमान जी का अवतार है, कोई बात नहीं, वो ग्वाल था वो। और ग्वालों में कैसा था, जब गौचारण करते थे ना तो हर रोज़ जब जाते थे, उनका रोज़ का पिकनिक है, हमारा साल में एक बार होता है, उनका रोज़ पिकनिक होता है, रोज़ जाते हैं गौचारण कर जंगल में खेल के आते हैं, तो हर रोज़ अलग अलग ग्वाल वालों के घर से भोजन आता था। तो उस दिन उसका टर्न था लौठा बाबा का, तो अरे कहाँ जा रहे हो कन्हैया, अरे मथुरा जा रहा हूँ, अरे मेरा टर्न है आज। उसका क्या हुआ, नहीं मैं परसों आऊँगा आपका भोजन पाऊँगा। तो बड़े उदास हो गए वो, अरे ऐसे कैसे जा रहे हो आप, आपको नहीं जाना चाहिए, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। नहीं नहीं मैं परसों आऊँगा, देखो कन्हैया तुम जा रहे हो, मैं यहीं बैठूँगा, यहाँ से हिलूँगा नहीं, जब तक नहीं आओगे तब तक बैठा रहूँगा, खाऊँगा नहीं पीऊँगा नहीं कुछ नहीं करूँगा। नहीं 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 डोंट वरी मैं आऊँगा। और भगवान किधर आए, आए क्या भगवान, 112 साल तक नहीं आए वो। उधर ही बैठा रहा वो, खाया पिया नहीं कुछ नहीं, व्रत में बैठा रहा। यही है भाव। हम लोग क्या बोलेंगे, अरे एक दो दिन हो गया, चलो भाई कौन मरेगा भूख से, खाओ पियो, जब आएगा तब देखा जाएगा, दोबारा खाना बनेगा खिलाएंगे उसको, स्पॉन्सरशिप करेंगे अपना। वैसा नहीं है इधर ब्रजवासियों में। तो वैसे ही गोपियों को कहा था मैं आऊँगा, दो दिन हो गए, उसके बाद तैयारी शुरू हो गई उनकी कि आएंगे। तैयारी मतलब क्या होता है, हमारे जैसा नहीं होता है, कितना कौन आए, कितना आइटम बनेगा हम डिस्कस करते हैं, चार पांच आइटम बन जाते हैं, एक आध दो मिठाई बनती है, एक आध दो पकौड़ा बनता है, एक आध दो सब्जी बन जाती है, मैक्सिमम 8-10 आइटम बन जाते हैं, फिर मेहमान आते हैं खाते हैं चले जाते हैं। इनका ऐसा नहीं है, इनका बहुत लंबा चौड़ा अरेंजमेंट होता है, वृंदा देवी सब व्यवस्था करती है, कौन सा रंग कौन से वन में खिला है वो तय करते हैं, आज इस वन में जाना है, फिर उसके उन जो फूल खिले हैं उनके रंगों के अनुसार आपको वस्त्र पहनाना है, वैसे फूलों की माला पहनानी है, सब मैचिंग पूरा, उसके अनुसार कौन सा सीजन है वो राग गाना है, और वो भी पहले एक राग गाना है उसके अनुकूल, फिर बीच रात में उसी समय का अनुकूल राग गाना है, फिर रात में अलग गाना है, फिर इस ताल पे नाचना है, ये गीत गाना है, आप लोग ऐसा वाद्य बजाओगे, तुम मृदंग बजाओगे, करताल बजाओगे, तुम वीणा बजाओगे, सब पूरा लंबा चौड़ा सेटिंग होता है। और क्या क्या खिलाएंगे, शाम को आधे वक्त की वेलकम ड्रिंक क्या देंगे, और रात को भोजन कैसे खिलाएंगे, तांबूल कौन बनाएगा, और शयन का गीत कौन गाएगा, सोने के बाद पंखा कौन करेगा, सुबह 4 बजे तक होता है पूरा ड्रामा आयोजन। और वृंदा देवी लीडर है उसकी, वो ललिता विशाखा देवी से गाइडेंस लेगी क्या करना है कंसेप्ट, और पूरा कंसेप्ट डेवलप करेगी वो, और फिर रिपोर्ट करेगी कि ऐसा ऐसा मैंने किया है, ठीक है ना, बोला हाँ करो, तो वन तय हो जाएगा, उसका गार्ड कौन है, गेट पर कौन खड़ा रहेगा निकुंज के, वो तय हो जाएगा, और अंदर कौन कौन क्या 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 विस्तार रूप में क्या सेवा करेंगे, या झूला बनाएंगे, या सिंहासन पर बिठाएंगे, या तो शैया पर बिठाएंगे, कौन से फूल की पंखुड़ियाँ बिछाएंगे, उस समय कौन सा गीत गाएंगे, हर चीज़ फिक्स्ड है। उसके बाद वो कौन श्रृंगार करेगा राधा कृष्ण का, फिर वो श्रृंगार करेंगे, तो इसमें खाली प्लानिंग में क्या हो रहा है, राधा है लेकिन कृष्ण नहीं है, तो राधा का श्रृंगार भी करने का प्लानिंग हो रहा है, खुद का श्रृंगार भी करने का प्लानिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भोजन बन रहा है अनेकों आइटम्स का, दिव्य अमृत तुल्य स्वादिष्ट भोजन बन रहा है। वो सारा करके फिर मिलन का समय तय होता है कि इस घड़ी में मिलना है, तो उस घड़ी में राधा रानी को लेके आते हैं और फिर वेट करते हैं कि कृष्ण आएगा, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सब भोजन रेडी है, लड्डू रेडी है, खीर रेडी है, लस्सी रेडी है, सब कुछ पेय खाद्य सब रेडी है, 6 प्रकार के व्यंजन जो है सब तैयार है, और फिर इंतज़ार किया जा रहा है। आप देखिए सब गोपियाँ सज धज के बैठी हुई, हम लोग तो केवल शादी में जाते थे, थोड़ा सज धज करते हैं, रोज़ सज धज करते हैं, कृष्ण आएंगे, उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, उनको विश्वास है, निष्ठा है उस बात पर कि वो आएंगे। फिर जैसे रात गहरी हो जाती है उनको समझ में आता है कि अभी वो आज तो नहीं आएंगे, फिर उसके बाद में वो विरह में सारी मालाएं तोड़ देते थे, सारे लड्डू तोड़ देते थे, सारा खाना पीना जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, छाती पीट पीट कर रात भर रोते थे, फिर सूरज के आने के बाद में फिर तुरंत संकोच में उठ के चले जाते थे। तो चर्चा करते थे, अरे कल तो नहीं आए वो, तो आ जाएंगे, चलो वापस फिर आज का प्लानिंग चालू। ऐसा उन्होंने कितने दिन किया? एक हफ्ता किया, दो हफ्ता किया, 112 साल किया। इसी विश्वास के साथ में कि आ जाएंगे, कल नहीं आए आज जरूर आएंगे, इतना देर नहीं कर सकते, वो आएंगे जरूर। हर रोज की तैयारी, कितनी निष्ठा होगी उनके मन के अंदर, कितनी श्रद्धा होगी और कितना पेशेंस होगा, इतना संयम किसके मन में हो सकता है, उसके लिए कितना प्रेम चाहिए। अगर बिना गुस्से का अगर संयम से वेट करना है तो कितना प्रेम चाहिए उस हृदय में, जो इतने समय तक इंतजार करके उसी उत्साह से। ऐसे नहीं कि अभी 3 साल हो गए, अभी एक काम करेंगे, 108 क्यों बनाते हो आइटम, अभी 85 बना दो, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन खाएगा उसको, ऐसा नहीं है। वो पूरे जोश के साथ, पूरा उत्साह के साथ में, इतनी भी कमी ना होते हुए सारी तैयारी हो रही है, कोई कमी नहीं है, भाव में भी कमी नहीं है और बाहरी वस्तु में भी कमी नहीं है। और एक समय ऐसा आया कि राह देखते देखते इतना विरह हो गया कि मानो अभी उनकी मृत्यु हो जाएगी उसमें, क्योंकि शरीर के लिए भोग तो है ही नहीं कुछ, वो कुछ अपने लिए कुछ करती नहीं थी, केवल इंतजार करना और कृष्ण भावना में मग्न रहना कि आएंगे, उसी उनकी याद करना बस। तो ऐसा एक समय आया कि उनका विरह का परिसीमा हो गया कि अभी वो शरीर भी रहेगा नहीं उनका, इतना विरह होगा कि मर जाएंगे अभी वो। बीच में एक बार उद्धव जी को भेज दिया संदेश देकर, थोड़ा सांत्वना देने के लिए, उद्धव जी क्लीन बोल्ड हो गए उनका भाव देखकर, वो क्या सांत्वना देंगे, उनका ज्ञान सब फेल हो गया, उनका सारा प्लान फेल हो गया, वो क्या काउंसलिंग करने वाले थे वो काउंसलिंग भी नहीं कर पाए, बोल ही नहीं पाए कुछ, इतना भाव इनका प्रकट किया उन्होंने गोपियों ने भगवान के प्रति, वो देखकर दंग रह गए, अरे ऐसा भी कोई प्रेम होता है, मैंने सोचा था कि मुझ जैसा भगवान का प्रेमी कोई नहीं, मेरे जैसा भगवान का निकट का व्यक्ति कोई नहीं, मैं इतना भगवान के निकट हूँ, इतना साथ में रहता हूँ, इतना सान्निध्य, इतना प्रेम और इतना रिश्ता किसी का नहीं मेरे जैसा, और आगे क्या है इसके, कुछ है नहीं। तो भगवान ने उसको जानबूझ के खत लेकर उसको ही भेज दिया समझाने के लिए, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है, जाके देखो। तो मथुरा की पाठशाला से गोपियों की पाठशाला में प्रवेश दिया उनको एज ए केजी स्टूडेंट। तो समझ में आया उनको कि सारा मेरा ज्ञान जो मैंने बृहस्पति से प्राप्त किया था यहाँ पर फेल है पूरा, वो इनके सामने तो फेल है, इन सो कॉल्ड तथा कथित गंवार औरतों के सामने मेरा सारा ज्ञान बृहस्पति का दिया हुआ फेल है यहाँ पर। और मैं सोच रहा था कि मैं भी भक्त हूँ भगवान का और वह निकट का साथी हूँ, वो भी फेल है यहाँ पर। तो जो कुछ योजना बना के आए थे सारी योजनाएं टूट गई पूरी उनकी, अभी ऐसा एकदम बोलते ना वो दिग्मूड हो गए, मतलब ऐसा क्या अभी करूं, क्या मैं क्या सेवा करूं इनकी अभी मैं। तो बाद में समझ में आया कि जब ये लोग बातें कर रही हैं तो बातें कर रही हैं भगवान के बारे में, बता रही हैं यहाँ ऐसे हुआ वहाँ ऐसे हुआ, तो उसी में उनको आनंद आ रहा है। तो बोले यही सोल्यूशन है उसका, ये बोलते रहे मैं सुनता रहूं, बस बोलने को तो मैं आया था लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये बोल रही है अपने आप सांत्वना पा रही है, चलो मैं सुनता हूँ। 6 महीने तक सारी गोपियों ने उनको पूरा ब्रज में घुमाया, सब जगह दिखाया जहाँ जहाँ उन्होंने क्या क्या किया था, यहाँ पर हम लोग ये करते थे, यहाँ पर गेंद खेलते थे, यहाँ पर जल में कूदते थे, यहाँ पर ऐसे करते थे, वहाँ पर मुरली बजाते थे, वहाँ पर हमारा मजाक उड़ाते थे, यहाँ पर वस्त्र छीन लिया, यहाँ पर ताने मारे, यहाँ पर ये किया, यहाँ पर राश रचाया। 6 महीने तक भगवान बोले गया किधर उद्धव, क्या कर क्या रहा है उधर, खत दे के आना था, 7 दिन काफ़ी थे। 6 महीने तक गायब रहा, उसको अपनी सेवा भी करनी थी ना, अभी उनको सांत्वना देना था, तो शायद मैं उनको दूँ या वो अपने आप को देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सांत्वना मिलनी चाहिए, इसलिए वो साथ दे रहा है उनका। 6 महीने बाद में उसको ये ऐसा अनुभूति हुआ कि ये गोपियाँ जो है इनके सामने मैं तुच्छ तिनका भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मतलब इनके सामने मैं क्या था और क्या अपने आप को समझता था वो सब चकनाचूर हो गया इनके सामने, अहम भी टूट गया, ज्ञान का और पद का और इसका और उसका सब कुछ ऐसे कि शून्य हो गया इनके सामने, इतना विशाल प्रेम है उनका। तो एक ही मन में विचार है उसके कि इनके चरणों की रज मिलनी चाहिए मुझे, इनके चरणों की धूल माथे में लगाऊंगा ना तो थोड़ा बहुत इनका कण मात्र जो प्रेम है वो मेरे में भी प्रवेश करेगा। लेकिन तब उसको ध्यान में आया कि अरे अगर मैं इनके चरणों में गिरूंगा तो कितना संकोच करेंगे ये। एक तो मैं मथुरा से आया हूँ, राजवेश पहन कर आया हूँ, रथ पे बैठ के आया हूँ, मुकुट पहन के आया हूँ, राज अलंकार पहन के आया हूँ, इतना सारा ऐश्वर्य के सामने वो ऑलरेडी सहमी हुई है मेरे सामने, वो बेचारी गांव की लड़कियां हैं, और मैं अगर चरणों में गिरूंगा तो इतना संकोच करेंगे उनका, इतना इनको कितना कष्ट होगा कि अरे राजा के आदमी मेरे चरणों में गिर रहे हैं, तो मुझे दिल से रज नहीं मिलेगी उनकी। लेकिन मैंने देखा है कि जब वो चलती हैं, जब चली मेरे साथ इतने 6 महीने तक, तो घास पे चलने पर उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई संकोच नहीं था, आराम से चल रही थी। तो घास ऐसी एक चीज़ है जिस पर वो आराम से अपना पैर रखते हैं, उनको कोई संकोच नहीं है, और घास जो है वो सारी रज उनके चरणों की प्राप्त करते हैं। तो उद्धव जी का भाव क्या था कि मैं अभी घास ही बनूंगा। देखो कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है ना, कुछ भी समझो आपकी एग्जाम है, आप लोग टीवी देखना बंद कर देते हैं, फ्रेंड के साथ घूमना बंद कर देते हैं, हाँ एग्जाम के टाइम पे कुछ एयर गैर खाते नहीं है, पानी पूरी रगड़ा पेटिस नहीं खाते हैं ताकि तबीयत ठीक रहे, बहुत सारा कुछ त्याग करते हैं क्योंकि एग्जाम आने वाले, एग्जाम ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क मिलेंगे तो आगे कुछ अच्छा होगा वो, इसलिए बहुत सारा हम लोग त्याग कर देते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको अमेरिका जाना है तो आप लोग फिर वहाँ पर ऐसा खाना खाएंगे, वैसे ठंडी है तो अपना ख्याल रखेंगे। तो कुछ ऊंची चीज़ प्राप्त करने के लिए आदमी तपस्या करता है, त्याग वाग कब करता है जब उससे उसको ऊंची चीज़ प्राप्त होगी, है ना। समझो कोई मोटी लड़की है, समझो बहुत ज़्यादा उसको शादी करनी है, तो वो फिर वो डाइटिंग करती है और ये नहीं खाती है, वो मिठाई नहीं खाती है, तन तला हुआ नहीं खाती है, चलने को जाती है, जिम में जाती है, ऐसा करती है, बहुत कष्ट करती है कि भाई कष्ट करूँगी तो अच्छा पति मिलेगा, कोई पसंद करेगा मुझे। तो कोई भी आदमी तपस्या करता है तो कुछ जो स्थिति है उससे बढ़िया स्थिति प्राप्त करने के लिए हम लोग तपस्या करते हैं। तपस्या कभी भी वहाँ से नीचे आने के लिए नहीं करते हैं, वहाँ से आगे जाने के लिए करते हैं। और ये हमारे उद्धव जी क्या बोल रहे हैं, जो भगवान के इतने पास में हैं, इतने भगवान के निकट स्थान प्राप्त कर चुके हैं, भगवान के दिल में उनके मित्र है, उनके खाना पीना साथ में खाते हैं, मजाक करते हैं, शैया पर सोते हैं, शिकार खेलने जाते हैं, दरबार में मंत्रणा करते हैं और हर चीज़ करते हैं, जो बोलो कौन सी चीज़ नहीं करते हैं, सब चीज़ करते हैं, इतने भगवान के निकट है। और गोपियाँ क्या सोचती होंगी, इतना भाग्यवान जीव है, इतना भगवान के पास रहता है, कोई बंधन नहीं, कोई संकोच नहीं, कुछ नहीं, और हम लोग इतनी दूर तड़प रही हैं, कितना भाग्यवान है व्यक्ति है, ऐसा गोपियाँ सोच रही हैं। वो सोच रहा है कि मैं जितना सोचता हूँ कि भगवान के पास हूँ, उसके अनंत गुना अधिक वो भगवान के पास में है, भगवान से दूर रहकर। मैं पास में रहकर भी इतना पास नहीं हूँ, ये दूर रहकर इतना पास है कि मुझे भी लग रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। तो गए, अपना काम किया और फिर द्वारका मथुरा गए, भगवान को मिले, पूरा रिपोर्ट दिया भगवान को कि मैंने क्या क्या किया, ऐसे ऐसे हुआ, वैसे वैसे हुआ, सब भगवान ने ध्यान से सुना। फिर भगवान को कहा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? मैं वृंदावन जा रहा हूँ। क्यों वृंदावन जा रहे हो? अभी कोई मैसेज नहीं है, अभी हो गया काम? नहीं, अभी मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। क्या करोगे तपस्या में? तपस्या करके मुझे तिनका बनना है, घास का पत्ता बनना है। ऐसे कोई तपस्या होती है क्या? डिमोशन तपस्या, एकदम ऊंचे स्थान से लेकर सबसे तुच्छ बनना, जैसे हमारे ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, 120,000 साल तपस्या किया, भगवान ने दर्शन दिया, बोले क्या चाहते हो? बोले आपके चरणों की धूल चाहता हूँ, आपके भक्तों की, राधा रानी गोपियों की, बोले जाओ पत्थर बन जाओ बरसाने में, तो यहाँ पर आके पत्थर बने। ब्रह्मा किधर? ब्रह्मांड के मालिक निर्माण करता, यहाँ पर आकर पत्थर बने। जिनको निर्माण किया वो भी सर पे चल रहे हैं उनके, जिनको बच्चे जन्म दिया, प्रजा उत्पादन किया, निर्माण किया, वो सारे जीव उन पे ऊपर चल रहे हैं और वो सबके नीचे पत्थर बनकर निर्जीव बनकर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल लाइफ है। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ में एग्जैक्टली उल्टा होता है। यहाँ पर हम लोग प्रगति करने के लिए तपस्या करते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में एग्जैक्टली उल्टा होता है। हम लोग तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना, ये करने के लिए तपस्या करते हैं कि ये चाहिए भाव, और लोग सब प्रगति करने के लिए तपस्या करते हैं। तो उद्धव जी यहाँ पर आए हैं, तपस्या किया है उन्होंने और फिर तृण के पत्ते का जन्म प्राप्त किया उन्होंने यहाँ पर। आज भी आप जाएंगे, उनकी तपस्थली है गोवर्धन में कुसुम सरोवर के पीछे, उसको उद्धव कुंड कहते हैं, और वहां पर उन्होंने तपस्या किया है, और आज भी वहां पर वो गुल्मलता यानी घास का एक जाति है, वो गुल्मलता के रूप में जन्म लेकर वहीं रहते हैं उसमें। और जब भगवान की पत्नियों को भगवान का वियोग हुआ, भगवान ने जब द्वारका से अंतर्धान हो गए तो पत्नियां रोती हुई वहां पर आई है और उन्होंने संकीर्तन किया है, तो ये गुल्मलता के रूप से प्रकट हो गए और 30 दिन तक भगवान की पत्नियों को भागवत सुनाया उन्होंने उसी जगह पर, फिर वापस गुल्मलता बंद कर। जब भगवान की पत्नियों का स्वरूप सिद्धि हो गई, वो भगवान के धाम में चली गई, वहां से अपने धाम को प्राप्त किया, दोबारा ये गुल्मलता बंद कर वहां निवास करने लगे। मतलब उनको परमानेंटली गोपियों के चरणों की धूल प्राप्त हो रही है, उसी को लेकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हूँ। आप जाएंगे तो आप बोलेंगे अरे ये घास का पत्ता है, आप भी पैर रखेंगे उसके ऊपर, लेकिन वो जीवन की परम प्राप्ति कर रहे हैं वहाँ पर रहकर। तो अल्टीमेटली क्या है, भगवान ये देखते रहिए कि ये मेरी गोपियाँ हैं, ये मेरी पत्नियाँ हैं, ये तो घास का तिनका है, ऐसा नहीं नहीं वो सब लोगों को जानते हैं कौन क्या है और किसका भाव क्या है। वो घास के तिनकों को तुच्छ नहीं मानते हैं और इनको ज़्यादा कीमत देते नहीं, और सबके भाव देखते हैं। ये है इस भूमि का भाव। हाँ, सब जगह भगवान भाव देखते रहते हैं, और ये तो ऐसे भाव से भरी हुई भूमि है, यहाँ का हर जीव भाव से भगवान को देखता है। यहाँ तक भगवान मुरली बजाते हैं तो उनके प्रेम से व्याकुल होकर गाय का जो बछड़ा है ना, उसके मुंह में गाय का आंचल है, वो दूध पी रहा है, उसके मुंह में भी दूध थोड़ा आ गया है, लेकिन ऐसे ही रहता है वो आ, और दूध है ना मुँह का एक एक करके टपकता है नीचे जमीन पर, और पृथ्वी देवी अपने आप को धन्य मानती है कि इस प्रेम भरे बछड़े के मुंह का जो दूध है वो मुझे प्रसाद के रूप में मिल रहा है। तो भूमि अपने आप को धन्य मान रही है, वो बछड़े के मुंह का प्रसाद जुटा मिलकर, और बछड़ा पूरा भाव में ऐसे आ, और गाय भी ऐसे आ, कान ऊपर पूछ ऊपर, और जैसे चित्रपट बन जाते हैं सब लोग, ये भाव है इनका। तो गाय कोई कम नहीं है, अरे गाय ऐसा नहीं है, वो गाय भी श्रेष्ठ भक्त है, अपने रस में भगवान की सेवा कर रही है, तृण का पत्ता भी सेवा कर रहा है भगवान को। तो भगवान कहते हैं जब पांव रखते थे ना जमीन पर तो हर एक तृण के पत्ते के साथ में उनका संपर्क होता था, और वो तृण का पत्ता मुलायम से मुलायम बनकर भगवान के पैर को सुख देने का प्रयास करता था। और इतने पंछी बोलते थे, सबको लगता कि पंछी बोल रहे हैं आनंद है, लेकिन हर पंछी भगवान को पुकार रहा था, और भगवान भी खेल खेल में ग्वाल बालों के साथ में हर पंछी की आवाज निकालते थे, सब लोग हंसते थे ग्वाल बाल, लेकिन भगवान एक्चुअली हर पंछी को उसके आवाज में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपने बुलाया मैंने सुना, मोर ने पुकारा तो मोर की आवाज निकाल रहे हैं, कोयल की आवाज निकाल रहे हैं, चक्रवाक की आवाज निकाल रहे हैं, इसकी आवाज निकाल रहे हैं, भारद्वाज की आवाज निकाल रहे हैं। तो बाहर लग रहा है कि ग्वाल बालों का खेल चल रहा है, वो आनंद ले रहे हैं जब वन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन भगवान हर जीव के साथ में उनके लेवल पर आदान प्रदान भावनाओं का कर रहे हैं। वो भी तो भाव के सागर है ना, वो भी थोड़ी कम है, थोड़ी केवल भक्तों में भाव है, वो तो भाव के स्रोत है। तो भाव से आप पुकार रहे हैं तो भाव से वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक मुरली बजाते हैं वो तो इतनी लाखों करोड़ों गायें हैं, सब अपना नाम सुनती है उसके अंदर, सब भाग के आती है, वो भी भाव वाली गायें हैं सब, एक धुन बजाते हैं मुरली में पेड़ पर चढ़कर, और सबको अपना नाम सुनाई पड़ता है, और वो कान ऊपर करके पूंछ ऊपर करके भाग के आती है और पेड़ के ऊपर देखती है, अरे कहाँ से मुरली की तान सुनाई पड़ रही। फिर कुछ गाय बाय गाय होती है ना, वो जानबूझकर सुनकर भी अनसुनी कर देती है, ऐसे ही चरती रहती, फिर वो उनके लिए पेड़ से उतरते हैं, उनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए इसलिए वो पेड़ से उतरते हैं, उनको थपथपाते हैं, प्रेम से गले लगाते हैं और खींच कर लेके आते हैं। तो भी एक भाव है, ये भी एक भाव है, सब भाव को वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और फिर सब लोग मिलकर गीत गाते हुए मुरली का गीत सुनते हुए नंद भवन में प्रवेश करते हैं। ये यहाँ का भाव है। एक और कहानी सुनाता हूँ आपको, इतनी कहानियां हैं, हर में मुझे यही दिखता है कि भगवान केवल भाव को प्रतिसाद दे रहे हैं, भाव का आदान प्रदान हो रहा है। इतना जो अवतार में इतना लीला किया है, आपका भाव उनका भाव, बस इसमें अलग अलग विविधतापूर्ण रसपूर्ण लीलाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो होता क्या है कि जब शाम को लौट के आते हैं गाय चराकर, तो ग्वाल बाल बड़े दुखी हो जाते हैं, अरे अभी तो शाम हो गई, क्यों शाम हो गई, हे सूरज तू क्यों ढल गया, जब तू ऊपर था तो भगवान हमारे साथ थे, तू उतर गया तो भगवान चले जा रहे हैं। और गोपियां वहां खुश हो रही है, सूरज कब ढलेगा, इतना ऊपर क्यों है, कब ढलेगा तू, कब हमारे मिलन का समय आएगा। तो उस वक्त बाल बाल दुखी, अभी घर जाने का समय आ गया, कन्हैया को छोड़ के जाना पड़ रहा है, गाय भी दुखी है कि हमको अभी अपने अपने गौशाला में जाना पड़ेगा, भगवान जाएंगे अपने घर पे। तो ये श्रीदामा जो है ना, भगवान का सखा है, राधा रानी का बड़ा भाई है, बड़ा दुखी हो जाता है। भगवान, उन्होंने कहा श्याम सुंदर, मैं ना रात भर सो नहीं सकता, मुझे इतनी याद आती है आपकी, लेकिन क्या करूं, मुझे नींद नहीं आती है, रात भर रोते रहता हूं। तो उन्होंने कहा कि क्या करें फिर, तो सीतामा ने कहा कि कम से कम आपका एक चित्रपट दो मुझे, ताकि मैं उसको देखता रहूँगा और थोड़ा थोड़ा मेरा दुख कम तो होता रहेगा। तो वो कृष्ण श्याम सुंदर अपने मैया के पास गए, उन्होंने कहा मैया, वो मेरा दोस्त है ना सीतामा, वो बहुत रोता है, उसको रात को नींद नहीं आती है, सुबह का इंतजार करता, लगता है एक एक पल जो है वो एक युग के समान होता है उसके लिए, रात बीतती नहीं है। तो वो क्या करें, मैया पूछने क्या करें, तो श्याम सुंदर बोलते हैं कि वो एक चित्रपट मांग रहा है, मेरा एक चित्रपट चाहिए उसको। मेरा इतनी सी बात है, क्या है उसमें, एक कागज़ ले लो, काला रंग ले लो, एक ब्रश ले लो, दो चार स्ट्रोक मार दो, हो गया आपका चित्रपट। तुम काले हो ना, मतलब ऐसा माँ ने भी मजाक किया, तो रोने पे आ गया एकदम, अरे मैया तुम मजाक मत करो, मैं बहुत गंभीर हूँ इस बात पर, मेरा मित्र रो रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, और मैं क्या इतना बुरा हूँ क्या कि दो चार काले स्ट्रोक मारेंगे तो मेरा चित्रपट हो जाएगा। तो मैया को भी लगा कि भाई गंभीर बात है, एक मजाक की बात नहीं है, तो बलट कोई बात नहीं, वो तुरंत चित्रा सखी को बुलाती है। चित्रा सखी बड़े भाग्य से भाग भाग के आती है, अरे मेरा कितना भाग्य है, मैया बुला रही है, कुछ सेवा दे रही है। तो बोलती है ऐसा ऐसा है, प्रसंग है, आपको कृष्ण का एक चित्रपट निकालना है। बोले भाभी निकाल के देती हूँ। तो आई वापस अपने घर पर और तुरंत सामान इकट्ठा किया और वो चित्रपट बनाने के लिए मन में ऐसा ध्यान कर रही है कि कौन सी छवि याद आएगी मुझे और कौन सी छवि मन में फिक्स करूं। ऐसा नहीं कि कृष्ण सामने खड़े और वो उसका ऐसा, हाँ ऐसे खड़े रहना, पैसे निकाल रही है, ऐसा नहीं है, कृष्ण अपने घर पे है, इसको अपनी सेवा करनी है। तो मन में वो सोच रही है कि अभी कौन सा भाव पकड़ूं मैं मन में और उसका चित्रपट निकालूं। तो क्या होता है, उसके मन में भगवान की, श्याम सुंदर की हजारों छवियां एक साथ ऐसे आने लगती है, मतलब मन में बहुत भीड़ हो जाती है। अभी कौन सा पकड़ो और कौन सा चित्रपट निकालूं, तो एक तय किया तो तुरंत दूसरी छवि मन में आ जाती है, एक तय किया तो और आ जाती है, तो फिर वो कुछ भी तय नहीं कर पाती है। तो उसको बड़ा दुख होता है, अरे कि इतनी बड़ी सेवा प्राप्त हो गया, वो सेवा में कर ही नहीं पा रही हूँ, शुरुआत ही नहीं कर पा रही हूँ, ये कैसे हो गया ऐसा, बड़ा दुखी हो जाती है। फिर विचार करते हैं उसके ऊपर, ऐसा क्यों हुआ, फिर उसको उत्तर मिलता है, उत्तर ये है कि मैंने श्याम सुंदर की सेवा करने के पहले राधा रानी का आशीर्वाद तो लिया ही नहीं, उनका ब्लेसिंग तो लिया ही नहीं, ऐसे ही भाव विभोर होकर शुरू करने का प्रयास किया, तो बड़ा दुख करती है। भाग के राधा रानी को जाके मिलती है, पूरी कहानी बताती है, बोलती है आप कृपा करो, आशीर्वाद दो, तो ये सेवा मेरे से हो सकती है, तो वो आशीर्वाद देती है। तो एक ही छवि चित्रा सखी के मन में फिक्स हो जाती है। बड़े विचार करने की बात है ये, कोई भी भगवान की सेवा ना, गुरुजन और राधा रानी भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकती है। भगवान की सेवा भी करने, आपको उनको संतुष्ट करने के लिए, तो उनके भक्तों की या उनकी कृपा चाहिए, बिना उसके आप नहीं कर सकते हैं, जितना भी आप कुशल होंगे। राधा रानी ने जब कृपा किया तो इनके मन में एक ही छवि फिट हो गई, मन में एक ही छवि, और तुरंत उन्हें चित्रपट निकाला। बहुत कलाकार चित्रकार है वो, बहुत चित्रा सखी ने चित्रपट पूरा किया और वो भाग के नंदगांव गई, यशोदा माई को दिया, यशोदा माई ने तुरंत श्याम सुंदर को दिया, श्याम सुंदर ने उसको सीतामा को दिया, फिर सीतामा उसको रात भर देख रहे हैं, कृष्ण भगवान सो रहे हैं और सीतामा चित्रपट देख रहे हैं, है कि नहीं भाव, हाँ इसी के भगवान भूखे हैं। इसमें खुश नहीं कि मैं सो रहा हूँ वो जाग रहा है, कितनी अच्छी बात है, उनके लिए प्रेम चाहिए उनको, और सबको इतना प्रेम देते हैं कि उस प्रेम को लेकर भक्त लोग पागल हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हो, इतनी कहानियाँ मैंने क्यों बताई, कि उसी भाव को हमको पकड़ना है, उसी भाव को यहाँ से लेके जाना है। हाँ बहाना तो कैंप का है, लेकिन भगवान के भाव को पकड़ना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाहरी दुष्ट कैंप का है, आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, आप सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, 5 to 5 कर रहे हैं, डे मॉर्निंग कर रहे हैं, इवनिंग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको अंदर से ये भूख होनी चाहिए, अंदर से ये तृष्णा होनी चाहिए कि इस भूमि में जो भाव रहस्य छुपा हुआ है वो मुझे कब प्राप्त होगा। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे राधे कब कृपा करोगी, कब आप पर मुझे अपनी नजर डालोगी, कब कृपा कटाक्ष मुझे प्राप्त होगा, तब मैं कृष्ण के लिए कुछ कर सकूं, नहीं तो मुझ में क्या शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या कला है, आपकी कृपा के बिना क्या कृष्ण की सेवा होगी, कुछ नहीं हो सकता है, आप ही उनकी सेवा के मालिक हो, स्वामिनी हो, आप जब कृपा करोगी तो कुछ सेवा होगी, आप कुछ सेवा होगी तो कुछ आपके भक्त प्रसन्न होंगे, फिर वो भी प्रसन्न होंगे जिनके लिए हम कर रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ का निवास बहुत डीप है, द स्टे हियर इज़ वेरी डीप एंड डीपली इमोशनल। केवल बाहर बाहर से भाई अच्छा मौसम है, ठंडा भी है और आनंद भी आ रहा है, बहुत भोजन भी अच्छा, जल्दी पचन होता है और यहाँ रहने में मज़ा भी आ रहा है बहुत, वो बात तो बार बार की है, हमको अंदर की यात्रा करनी है, बरसाने की अंदर से यात्रा करनी है कि सही रूप में बरसाने में आए तो ही आपको भाव प्राप्त होगा, नहीं तो आए और गए, वो क्या बोलते हैं, लोचन बे ले ओई भक्त एलो और गैलो वो रोशनदास ठाकुर जी बोलते हैं कि ऐसे भक्त तो आते जाते रहते हैं, उसमें क्या है बड़ी बात, वट इज द अचीवमेंट, कुछ भी नहीं, आया और गया, हम भी ऐसे आए गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगा और चले गए, क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त करने के लिए तो मनुष्य जीवन दिया है। और अगर मैंने अभी जो जो कुछ एक घंटा बोला, अगर यहाँ पर कुत्तों की सभा बैठी होती, बिल्लियों की सभा बैठी होती तो मैं कुछ बोल पाता क्या, क्या बोलूँगा उनके सामने आप लोग मनुष्य हो, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका यंत्र जो है इसके लिए अनुकूल है, इसलिए आपको ये बताया जा सकता है, मैं भी इसको बोल के सुन सकता हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मेरे लिए बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, तो क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हो, तो आपके साथ में ये बातें हो सकती है और हम समझ भी सकते हैं अगर उनकी कृपा रही तो, और समझेंगे तो बाद में प्राप्त भी हो सकता है भाव वो, तो उसी के लिए जन्म दिया है, ये शरीर के भोग के लिए नहीं दिया है, शरीर के भोग तो होते रहते हैं, खाना पीना रहना सब चलते रहता है, लेकिन उसके लिए शरीर नहीं दिया है, ये शरीर दिया है उनके प्रेम के भाव को प्राप्त करने के लिए, तब जाकर ये जीवन सफल है और हमारी सेवा सफल है, हमारी हर सांस सफल है, हर धड़कन सफल है, तो क्यों हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, चाहे किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, कई भाषा बोलने वाले हो, गोले हो, काले हो, विदेशी हो, देशी हो, हु केयर्स, भगवान को भजन करो, डोंट वेस्ट टाइम, अनंत जन्म बिता दिए हमने यहाँ पर, जन्म लेते हुए कुत्ता बिल्ली बने, पंछी बने, पेड़ बने, ये बने वो बने, सब में भोग लिया हमने, सब में हमारा परिवार था, बच्चे थे, पत्नियां थी, ये थे वो था, अभी भी है, चलता रहेगा प्रपंच, लेकिन भगवान कब प्राप्त होंगे, कब ये दुष्ट चक्र जो है विशियस साइकिल कब समाप्त होगा, कब ब्रेक होगा इसका, यही मौका है मनुष्य जीवन में, अब नहीं तो कब नहीं, ऐसा राजनीति के लोग बोलते हैं इलेक्शन में, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम भी वही बोलते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं अब की बार राधा रानी की सरकार हमारे जीवन में, ऐसे होना चाहिए जीवन। प्रभुपाद जी को भक्ति सुनाथ महाराज ने यही कहा था, अरे ब्रिटिशों की सरकार है, बाद में तुम्हारी आएंगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जन्म मृत्यु की चक्र चलता रहेगा, ब्रिटिश राज्य करेंगे या आप राज्य करेंगे, अभी भाजपा करेगी या कांग्रेस करेगी या ये करेगी या सपा करेगी या बसपा करेगी, जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा, उससे कब छुटकारा पाओगे, वो अर्जेंट मामला है, सरकार बदलने का अर्जेंट मामला नहीं है, हमारे जीवन का सरकार कौन है, वो बदलने का अर्जेंट है अभी माया देवी सरकार है हमारी कि राधा रानी सरकार है, इसी का इलेक्शन चल रहा है, राधा रानी का सरकार पे निशाना मारोगे ना तो वो सरकार बनेगी अपने ऊपर, तो जीवन सफल है आपका, बाकी माया का सरकार आपने स्वीकार किया तो माया में ही पड़े रहोगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भोगते रहो, लात खाते रहो, मार खाते रहो, पीटते रहो और बार बार आते रहो, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट, लेकिन कर लो राम भजन अर्जेंट, हिम्मत भूलना ये जीवन का सार है, बोलो सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, हरे कृष्णा।